नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं नगमा। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा चुनाव अपना आधे से ज्यादा सफर पूरा कर चुका है। तीसरे चरण में आज 93 सीटों पर मतदान पूरा होने के साथ ही 543 सदस्यों की लोकसभा की 284 सीटों के लिए चुनाव का काम पूरा हो गया है। लोकसभा में जो 284 सीटों के लिए चुनाव का काम पूरा हुआ है, लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सदस्यों की जरूरत होती है और 282 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। अब बाकी चार चरणों में 259 सीटों पर मतदान होना है। तो आज प्राइम टाइम में हम इस आधे से ज्यादा चुनाव का पूरा विश्लेषण करेंगे और हमारे साथ होंगे तीन खास मेहमान। संजय कुमार हमारे साथ हैं जो चुनाव विश्लेषक हैं, हमारे साथ नीरजा चौधरी स्टूडियो में जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ साथ हमारे साथ हैं संदीप शास्त्री चुनाव विश्लेषक। तो लोकसभा चुनाव के जो चार सबसे बड़े चरणों में से तीन पूरे हो चुके हैं, उसमें आज तीसरे दौर में 61.45% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में तीसरे दौर में 66.9% वोट डाले गए थे। तो आप देख रहे हैं कि ये वोट परसेंट जो है वो कम हुआ है। हालांकि मतदान के आज के आंकड़े सब अभी और अपडेट होने बाकी हैं, जिसके बाद से जो फाइनल तस्वीर है वो सामने आएगी। आप देखें 2019 में 66.9%, 2024 में 61.4%, यानी के 0.6% की कमी यहां पर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अपडेट होने के बाद भी जो करीब 0.6% की ये भरपाई है वो हो पाएगी। राज्यों में सबसे ज्यादा मतदान आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां हुआ है। असम में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। राज्यों में अगर हम देखें तो 75% मतदान हुआ है असम में, जबकि सबसे कम मतदान तमाम राज्यों में जहां चुनाव हुए वो महाराष्ट्र में हुआ, करीब 53.7%। ये लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरा चरण था जहां सबसे कम मतदान महाराष्ट्र ने किया है। और अब सभी राज्यों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं कि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 2019 के मुकाबले जो मतदान है वो कैसा रहा है। तो आज जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुआ वहां पर सभी जगह मतदान 2019 के मुकाबले घटा है। डिटेल में देखिए, असम में सबसे पहले बता दें कि मतदान जो है वो 10.2% घटा है। हालांकि 75% हुआ है, लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले ये 10.2% कम है। इसके अलावा बिहार का देखते हैं कि क्या है बिहार का आंकड़ा। तो बिहार में भी मतदान घटा है, 56% हुआ है मतदान, जो कि पिछले बार के मुकाबले 4.9% कम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 4% कम वोटिंग हुई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कंपैरिजन 2019 से, 2019 बनाम 2024। तो छत्तीसगढ़ में भी 4% वोटिंग जो है वो कम हुई है। अब देखें दादरा और नागर हवेली में क्या रहा। तो दादरा नागर हवेली जो है उसमें 11.9% कम हुआ है वोटिंग जो है वो पिछले बार के मुकाबले। गोवा में भी 2.2% वोटिंग कम हुई है। गुजरात में 8.7% घटी है वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हुआ है गुजरात में पिछली बार के मुकाबले। तो यहां पर 56% हुआ है, पर -8.7%, तो एक अच्छा खासा ड्रॉप गुजरात में देखा गया है। कर्नाटका में लगभग 2.5% घटी है वोटिंग। महाराष्ट्र में 10.2% कम हुई है वोटिंग। तो देखें ये 54% और पिछले बार के मुकाबले 10.2% कम है। मध्य प्रदेश में भी पिछले बार के मुकाबले 4.2% कम वोटिंग। इस बार 63% वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये पिछले बार के मुकाबले कम है, 4% कम। उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग कम हुई है, यानी कि सभी राज्यों में वोटिंग कम हुई है 2019 के मुकाबले। तो उत्तर प्रदेश में भी -3.9%, लगभग 4% वोटिंग कम हुई है पिछले चुनाव के मुकाबले। तो 56% वोटिंग रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये 3.9% कम है। इसके बाद आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल का आंकड़ा क्या रहा। पश्चिम बंगाल में हालांकि इस बार वोटिंग अच्छी हुई है बाकी राज्यों के मुकाबले, लेकिन 7.8% घटा है वोट डालने का प्रतिशत जो है मतदान, 7.8% कम हुआ है पश्चिम बंगाल में। हालांकि मतदान यहां पर फिर भी अच्छा हुआ है। इसके अलावा आप देखें कि आपको हमने दिखाया पश्चिम बंगाल, लेकिन अब ये भी देखते हैं कि किस लोकसभा सीट में सबसे अधिक मतदान हुआ। तो ये बहुत दिलचस्प है कि असम के धुबरी में 79.7% वोटिंग यहां पर हुई है। सबसे ज्यादा मतदान जो है वो असम के धुबरी में हुआ है, और यहाँ जो सबसे कम मतदान हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो सीट है वो असम के धुबरी में, जहां 79.7% मतदान हुआ, और जिस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ वो है गुजरात की अमरेली। गुजरात में अमरेली में 46% सिर्फ वोट डाले गए हैं। तो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से इन तीन चरणों में जो सबसे खास बात देखने में आई वो ये कि मतदान का जो प्रतिशत है इन तीनों ही चरणों में 2019 के मुकाबले ये कम है। आप देखें 2019 में 69.5% वोटिंग हुई थी फेज वन में, 2024 में ये 66.4% रह गई। उसके बाद आपको दिखाते हैं हम जो सेकेंड फेज है उसमें 69.4% 2019 में घट के 66.7% है 2024 में। जो तीसरा फेज है, तीसरे फेज में भी वोटिंग कम हुई है। 2019 में ये 68% थी और 2024 में ये सिर्फ 60.6% रही, यानी कि यहां पर भी वोटिंग परसेंट जो है वो घटा है। तो इन तीनों चरणों में वोटिंग परसेंट जो प्रतिशत है मतदान का वो लगातार कम हुआ है, जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं इन पूरे चुनावों के दौर में कि ये कम मतदान जो हुआ है इसका क्या मतलब है। तो 2019 में जो लगातार बढ़ते रहे हैं चरण, उसके साथ मतदान का प्रतिशत गिरता गया और इस बार भी कम ही है। 2019 और 2024 में अंतर यह है कि 2019 में तीन चरण तक 302 सीटों पर मतदान हो गया था, लेकिन इस बार अभी 282 सीटों पर मतदान हुआ है, यानी कि थर्ड फेज तक पिछली बार 2019 में ज्यादा सीटों पर मतदान हुआ था, अभी जो है वो कम ही हुआ है। फिर भी हम कह सकते हैं कि आधा चुनाव जो है वो हो चुका है। तो आज मतदान के साथ ही कई बड़ी हस्तियों ने भी अपने वोट डाले हैं, जिनकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखें यहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालते हुए दिखे, अहमदाबाद में अपना वोट डाला है। जो गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में आता है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके बाद अपने अहमदाबाद के नारनपुरा के मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। आज मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री ने जनता से अपील भी की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर वोट डालने आए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अहमदाबाद में ही अपना वोट डाला है। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटका के शिवमोगा में, एनसीपी जो शरद चंद्र पवार गुट है उसके अध्यक्ष शरद पवार ने बारामती में अपना वोट डाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला विदिशा में। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जिनीलिया डिजूजा, इन्होंने भी महाराष्ट्र के लातूर में वोट डाला। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने महाराष्ट्र के शोलापुर में अपना मतदान किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने पुणे में अपना वोट डाला है। तो ये तमाम बड़े चेहरे हमने आपको दिखाए हैं जिन लोगों ने अपनी वोटिंग की है आज। और अब हम एक एक करके कुछ बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आपको हमने बताया कि स्टूडियो में हमारे साथ में नीरजा चौधरी हैं, संजय जी हैं और संदीप शास्त्री जी जूम पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो तीसरे चरण के मतदान के बाद जो 10 प्रमुख सवाल उठते हैं उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो एक सवाल ये है बहुत बड़ा, लगातार आपने देखा कि वोट परसेंट किस तरह से कम हुआ है 2019 और 2024 में, और तीनों फेज में लगातार कम हुआ है। तो लगातार तीसरे दौर में जो मतदान घटा है उसके क्या मायने हैं? संदीप शास्त्री जी, मैं आपसे शुरुआत करूं, तो ये जो ट्रेंड दिखा है तीनों ही फेज में, चाहे असम ही हो जहां पर अच्छा वोटिंग परसेंट रहा लेकिन वो भी 2019 के मुकाबले कम है, तो क्या कुछ इंडिकेशन है ये? और आप देखिए कि गुजरात के अमरेली में कितनी कम वोटिंग हुई है, बारामती में कितनी कम वोटिंग हुई है, क्या इसका आप विश्लेषण समझ पा रहे हैं, क्या कोई पैटर्न इसमें है?
नगमा जी, एक तो वेदर की जो गर्मी है वो काफी लोग कहेंगे वो एक कारण है, लेकिन और एक कारण है, ये पॉलिटिकल वेदर भी उतना गर्म शायद नहीं हुआ है कि लोग आए और बाहर वोट करें। जब कम परसेंटेज में वोटिंग होता है जनरली एक फीलिंग है कि कमिटेड वोटर्स आके बाहर, जो एक कमी पार्टी को कमिटेड है वो आके बाहर वोट करते हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर होता है वो शायद वोटिंग करने में थोड़ा झिझकता है। सो शायद उसका इम्पैक्ट कहीं आप देखेंगे, लेकिन आपको ये पूरे देश में कम हुआ है जब आप कहते हैं हमें हर एक राज्य में हर एक क्षेत्र में देखना पड़ेगा। और एक बात नगमा जी, हम कंपैरिजन 2019 से कर रहे हैं, 2019 से एक तरह से एक विशेष चुनाव था जिसमें काफी ज्यादा मतदान हुआ, शायद हम इसको उसके पहले के चुनावों से कंपेयर करें तो शायद उतना फर्क हमें दिखेगा नहीं। तो ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। और स्पेसिफिकली एक बात जो आपने उठाई, अगर आप महाराष्ट्र को देखें और वहां आप देखें कि 56% मतदान हुआ, वहां पे क्लियरली जिस तरह से दो पार्टियां चार पार्टियां हो गई हैं और उन चार पार्टियों के वजह से वोटर के मन में ये लेजिटिमेसी के बारे में एक प्रश्न जो उठा है उससे भी शायद थोड़ा उतना इंटरेस्ट इलेक्शन में नहीं दिख रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है स्पेसिफिकली महाराष्ट्र
जी। आपको भी लगता है संजय जी कि ये कारण है कि वोटर के मन में इंटरेस्ट नहीं है या गर्मी है, या क्या आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वोटिंग कम हुई इस दफा?
महत्वपूर्ण तो मुझे लगता है सबके लिए होना चाहिए, वोटरों के लिए, विश्लेषकों के लिए, और खासकर उम्मीदवार और पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। क्योंकि ये इस बात का सूचक तो जरूर है कि लोगों का जो चुनावों में जो दिलचस्पी है वो कहीं ना कहीं घटती हुई दिखाई पड़ती है। अब कारण उसका जो भी रहे, हो सकता है मौसम की गर्मी भी हो, लेकिन मैं मौसम की गर्मी को ज्यादा महत्व नहीं देता। मुझे लगता है कि नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, एक तो थोड़ा उदासीनता तो साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर आप असम को देखें, बंगाल को देखें, इन राज्यों में टर्नआउट घटा है, फिर भी दूसरे राज्यों की तुलना में कम घटा है और अभी भी एक डिसेंट आपको टर्नआउट दिखाई पड़ता है। तो उन राज्यों में, महाराष्ट्र की चर्चा बार बार हो रही है और महाराष्ट्र में वोटरों के मन में भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत उदासीनता है, और आप कहें थोड़े डिसएंचेंटेड हैं, किसको वोट दे, वोट किसको दिया, सरकार किसके साथ बना ली, उसके बाद वो पार्टी टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक उदासीनता का तो बिल्कुल स्पष्ट सूचक है कि चुनाव में जो दिलचस्पी, या आप कहें जिस तरह से हमारा लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र चल रहा है, उससे लोगों की उदासीनता साफ दिखाई पड़ती है।
और लोगों की उदासीनता या जो कंफ्यूजन है नीरजा जी, वो बारामती में एक केस स्टडी हो सकता है कि ये कंफ्यूजन है कि किसको वोट दें, वही फैमिली है जो लड़ रही है आपस में।
देखिए, बारामती एक अलग ही किस्सा है, क्योंकि बारामती में लोग जो कह रहे थे कि हमारे लिए तो महा टेंशन हो गई है, पवार वर्सेस पवार किसको दें, क्योंकि पवार परिवार ही बारामती को नर्चर करता आया है, अजीत पवार असेंबली रिप्रेजेंट करते हैं, सो सारे काम जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है सालों से अजीत पवार देखते रहे, तो लोगों के काम करते रहे और परिवार इकट्ठा था। अब सुप्रिया सुले वर्सेस अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा की इतनी बिटर लड़ाई हो रही है कि आम जनता के लिए धर्म संकट है। तो ये कारण, मैं जब वहां थी तो लोग ये कहते थे हो सकता हम निकले ही नहीं, क्योंकि हो सकता दोनों साइड को पता लग जाए कि हमने कैसे वोट किया है,
तो वो एक
डर भी है। कई लोग निकले ही नहीं हो कि छोड़ो
इसको। इसी के लिए इतनी कम वोटिंग हुई वहां पर, ये एक बड़ी चिंता लोगों में थी कि हम निकले तो फिर दूसरा साइड जो है वो नाराज हो जाएगा। एक बड़ा सवाल और भी इसके अलावा है कि अब ये जो कम वोटिंग हुई है इसके बावजूद, क्या कम मतदान के बावजूद बीजेपी अपना अच्छा स्कोर जो है वो कायम रख पाएगी? निर्जा जी, ये कम वोटिंग बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है?
देखिए, नॉर्मली क्या होता है, परिवर्तन की चाह या उत्साह किसी इश्यू पे। अब 2014 में जो हमने देखा, यूपीए के खिलाफ एक बहुत भारी सेंटिमेंट था और नरेंद्र मोदी सीन पे थे तो एक उत्साह था, और 2019 में पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक से हुई नेशनल फीलिंग को लेके एक उत्साह था। इस इलेक्शन में कोई वेव नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग बीजेपी के लिए नहीं वोट करेंगे, पर जिस तरह से नॉर्मली होता है ना उस तरह का नहीं है। तो ना हिंदू मुस्लिम था, फर्स्ट टू फेजेस में हिंदू मुस्लिम नहीं था, लेकिन अब उसको एक टर्न दे
मतलब
रहे हैं।
मतलब उतना हो नहीं पाया वैसे पोलराइज,
अब कितना, हाँ उतना नहीं हो पा रहा है बावजूद इसके कि कोशिश की जा रही है।
जी जी,
लेकिन
जी।
फिर भी जैसा मैंने कहा उसके अंदर भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। मान लीजिए मुजफ्फरनगर की सीट ले लीजिए, तो वहां तकरीबन जब आंकड़े आए थे 60-61% था, तो लोगों से बात करके पता लगा कि मुस्लिम मोहल्लों में जबरदस्त लोग निकले हैं, उनकी 70-80% वोटर निकला है, तो लेकिन हिंदू मोहल्लों में
नहीं निकले उतने
लोग, नहीं निकले,
तो
40-50%
जी
था।
तो इसी से जुड़ा ये जो हम लोग अभी देख रहे थे संजय जी, जो वोटिंग भी हुई है उसमें आप देखें तो असम में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है और असम के भी धुबरी में वोटिंग हुई है। बंगाल में भी जो सीटें इस बार थी वो बहुत मुस्लिम बहुल सीटें थी और वोटिंग परसेंट ज्यादा है, लेकिन आप बाकी जगहों पर अगर देखें तो वोटिंग परसेंट कम है। तो
सीधा सीधा संबंध फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको उन कंस्टिट्यूएंसी में भी टर्नआउट घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत सीधा संबंध नहीं है, ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि माइनॉरिटीज ने, खासकर मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और हिंदू मतदाताओं ने थोड़ा कम वोट किया। सीधा सीधा ट्रेंड नहीं है। चुनाव बहुत लोकलाइज्ड हो गया है। अगर एक नेशनल नैरेटिव होता तो वो एक इफोरिया होता है और उस इफोरिया में टर्नआउट भी बढ़ता, लेकिन वो इफोरिया का अभाव है, वो एक बड़ा लार्जर नैरेटिव दिखाई नहीं पड़ता। और चूंकि नैरेटिव जो चुनाव के जो जो जोड़ गणित जोड़ घटाव जो है वो बहुत लोकलाइज्ड हो गया, इसी के लिए टर्नआउट पर उसका असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर लोगों की दिलचस्पी कम है, टर्नआउट कम हो गया है।
जी जी, तो बंगाल में मतदान जो है वो भी वहां पे भी घटा है, ये भी दिख रहा है। एक उसके अलावा जो सवाल उठता है वो कर्नाटका से, संदीप शास्त्री जी, कि कर्नाटका में आपको लग रहा है कि जो विवाद वहां पे चुनाव के बीच में आ गया, प्रज्वल रेवन्ना का विवाद, उसका कोई असर वहां पे पड़ रहा है क्या इन चुनावों में?
देखिए, प्रज्वल रेवन्ना के विषय पे मैं एक बात साफ कहूंगा कि सभी पार्टियों ने, इस उनकी पार्टी ने भी कहा है कि अगर इस तथ्य में कुछ सच है तो जो इसका कारण है उसके विरुद्ध क्रम होना चाहिए। ये सभी पार्टियों ने साफ कह दिया है, बीजेपी ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है और जनता दल के लीडर्स ने खुद ये बात कही। सो पहली बात, इसका खंडन हुआ है, इसका खंडन होना चाहिए और ये सभी पार्टियों ने किया है। क्या इसका इंपैक्ट चुनाव पे पड़ेगा? देखें, कर्नाटका के उत्तरी भाग में देखें जहां आर्थिक परिस्थिति कई क्षेत्रों में ज्यादा नहीं है, जिसे हम कर्नाटका में कल्याण कर्नाटका बताते हैं, वहां पे कांग्रेस की सिचुएशन थोड़ी बेहतर दिख रही है दो कारण से, उनके 5 गारंटीज और एक फीलिंग है कि विमेन वोट्स जो थोड़ा ज्यादा बाहर निकल के आए हैं वोट करने के लिए, क्या इस मामले का कुछ इम्पैक्ट आप देखेंगे? दूसरी तरफ आज जहां कित्तूर कर्नाटका में वोटिंग हुआ वो बीजेपी का गढ़ माना गया है काफी वर्षों से, और वहां पे भी इस बार उतना कांग्रेस के साथ कंपटीशन का प्रश्न नहीं था, बट बीजेपी के थोड़े आंतरिक समस्याएं थी इस क्षेत्र में। सो कर्नाटका में इस बार स्पेशली आज जो मतदान हुआ है, काफी कॉम्पिटिशन और काफी और अलग कारणों से कंपटीशन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वो कल्याण कर्नाटका में हो या आप कित्तूर कर्नाटका में देखें या मध्य कर्नाटका में देखें, विषय अलग हैं और 14 स्थानों में 14 अलग विषय हैं जिसके कारण से वहां ट्रेंड एक बन रहा है इन सीटों में।
जी, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, वहां पर भी कर्नाटका में भी देखा जा रहा है जो कारण रहे। लेकिन हम कुछ देर पहले अपने सहयोगी से भी वहां बात कर रहे थे, और जहां तक प्रज्वल रेवन्ना की बात है, उनका कहना है कि उन कई जगहों पे जहां पे रिंट का होल्ड है परिवार का, तो लोग देवेगौड़ा के लिए वोट कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि कैंडिडेट कौन है और क्या मुद्दा है। तो खास करके रूरल एरियाज में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। तो ये शायद ग्राउंड पे हालात हैं, हालांकि अलग अलग जगहों पर अलग मुद्दे। अब हम महाराष्ट्र पे वापस आना चाहते हैं। हमने महाराष्ट्र में एक बड़ा सवाल जो उठ रहा था, शुरुआत में भी मैंने चर्चा की नीरजा जी की, महाराष्ट्र में खास करके बारामती पे सबकी निगाह टिकी हुई, हालांकि यहां पे विरासती लड़ाई दो तरह देखी जा रही है, एक तो ठाकरे परिवार के लिए भी है, इधर परिवार जो पवार खानदान है उसके लिए भी है। तो बारामती में चाचा या भतीजा, ये जो सवाल है एक बना हुआ, एक शरद पवार के लिए क्या सिंपथी वेव वहां पर है, अजीत पवार के लिए लोग क्या कहते हैं, वो पावर में है, लोग उनकी ओर भी देख रहे हैं मदद के लिए, लेकिन शरद पवार बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या भावना है, बीच में वो बीमार भी पड़े।
मैंने जैसे सतारा, पूना, ये बारामती, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र की जो सीटें हैं जहाँ की शरद पवार का ट्रेडिशनली होल्ड रहा है
जी,
वहां लोगों से अगर गांव में भी बात करिए तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि इस उम्र में शरद पवार को दुख दिया जाए जब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। तो चाहे सुनेत्रा के बारे में कुछ सुने, वो समझे सुप्रिया सुले के बारे में जो भी उनका व्यू हो, लेकिन असली लड़ाई अजीत पवार वर्सेस शरद पवार है, और उतना ही नहीं एक पॉलिटिकल लेगेसी की है जो एनसीपी महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट करती है। तो अगर शरद पवार जीत जाते हैं, सुप्रिया सुले जीत जाती हैं, तो शरद पवार की जीत मानी जाएगी। और क्या उनका अभी भी उनका दमखम है पॉलिटिक्स में, और बहुत अनुभवी नेता है, टॉल लीडर है ऑपोजिशन के आज, अगर अजीत पवार जीत जाते हैं, और वो लोगों से उन्होंने ये कहा है गांव गांव जाके कि आपको काम के लिए तो मेरे पास ही आना पड़ेगा
जी जी,
तो
जी।
कई जो यूथ तबका है उनको लगता है कि आगे की लीडरशिप उनकी है। तो ये जो सिंपथी वर्सेस स्टेट पावर ऑर्गेनाइजेशन एमएलए जो उनके साथ हैं, और शरद पवार की पॉलिटिक्स ऑफ 50 इयर्स, ये दोनों के बीच में एक
लड़ाई वही है कि कौन है असली एनसीपी यहाँ पर किसके लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र में, हालांकि ये भी है कि असली जो शिवसेना है वो कौन है, क्या ये चुनाव ये भी तय कर पाएगा। और पर यूपी की ओर बढ़े हम संजय जी, और यूपी में देखें कि इस बार जो है वो जाटलैंड से यादवलैंड में भी एक तरह से वोट इस बार हो रहा था, तो यहां पर मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे है। अब उनकी फैमिली से इसी फेज में तीन लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो ये वहां पर आपको क्या लग रहा है इनके लिए इस बार?
अगर हम इस फेज की बात कर रहे हैं, आपने जिसका जिक्र किया नगमा जी, कि मुलायम सिंह परिवार के, यादव परिवार के तीन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से प्रतिष्ठा दांव पर है और स्टेक्स बहुत हाई हैं समाजवादी पार्टी के लिए। जिस तरह से गठबंधन, वैसे तो थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, जब मैं कमजोर कह रहा हूं तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, दोनों के अगर वोट को आप 2019 के लोकसभा चुनाव को जोड़ें तो लगता है कि मुकाबला बहुत दिखाई नहीं पड़ता, लगता कि एक तरफा चुनाव हो जाएगा, लेकिन शायद हकीकत वो नहीं है, चुनावी मुकाबला हो रहा है। और आज के फेज में तो मुझे लगता है खासकर समाजवादी पार्टी शायद बहुत अच्छा की होगी, क्योंकि उन्हें उनके परिवार के तीन लोग चुनाव मैदान में हैं। मुझे लग रहा है कि अलग अलग फेजेज में जब हम देख रहे हैं तो हर फेज में कुछ ना कुछ नई बात आ रही है और कुछ ना कुछ एक नया संघर्ष पार्टियों के बीच में दिखाई पड़ रहा है। और फाइनली हम यही कहेंगे कि अल्टीमेटली हमें 4 जून का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ये जानने के लिए कि आखिर ऊंट किस करवट बैठा।
बिल्कुल, और इस बीच में ये लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ना कि जो कम हुआ है मतदान वो क्यों हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश एक अगेन एक स्टेट है कि वहां पर इस दफा, हालांकि वहां पर बताया गया कि राजगढ़ में अच्छा मतदान हुआ है, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत कम है, कुछ इसके ऊपर कैसे समझें इसको?
देखिये
हर जगह वही उदासीनता सी है एक।
हाँ, और मध्य प्रदेश में वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कई हैं,
कई हैं, महाराजा राजा तमाम लोग हैं।
शिवराज चौहान है विदिशा में, गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह है। तो क्या इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होने वाला है? ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है कि दिग्विजय सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा है
जी,
मतदान
जी।
क्यों इन दिग्गजों का फ्यूचर क्या होगा ये आज डिसाइड करेगा।
हाँ, और अभी तक जो जिस तरह से वोटिंग रही है या जो सामने आप लोगों को संजय जी कई सारे आंकड़े भी आ रहे होंगे, क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस, ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि बहुत तरह की बातें इस चुनाव के बीच में शुरुआत में क्या था, लेकिन धीरे धीरे क्यों होपफुल भी हुई दूसरी जो अलायंस है, तो क्या लग रही है स्थिति इस वक्त?
हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, तो अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकती है तो कांग्रेस ही कर सकती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बाइपोलर कंटेस्ट है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इतनी मजबूत उभर के आई है? कुछ राज्यों में ऐसा लगता है कि 2019 की तुलना में कांग्रेस थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। क्या इतनी मजबूत हुई है कि बीजेपी को परास्त कर देगी? क्या इतनी मजबूत हुई है कि बीजेपी को कड़ा टक्कर दे रही है? कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है जिस तरह का चुनाव 2-3 महीने पहले दिखाई पड़ता था, आज चुनाव की सूरत थोड़ी बदली बदली सी दिखाई पड़ती है।
और एक जो तीसरे चुनाव की सूरत थोड़ी बदली सी दिखाई देती है, तो तीसरे चरण तक की जो वोटिंग हुई है या जो तीसरे चरण की वोटिंग है संदीप जी, वो किसके लिए खतरे की घंटी लगती है आपको? कम वोटिंग जो
ये जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा कि इन तीन चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ है उसके लिए उससे नुकसान ज्यादा किसको है या फायदा ज्यादा किसको है। ये बात जरूर करूंगा कि मतदार को नुकसान हुआ है क्योंकि वो ज्यादा संख्या में वोट करने आया नहीं है, लेकिन पक्ष पे उसका इन्फ्लुएंस मुझे ये आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना पड़ेगा। राज्य और राज्य भी नहीं देख सकते, राज्य के अंदर रीजन बाय रीजन देखना पड़ेगा। जैसे नीरजा जी ने अभी कहा, जहां प्रोमिनेंट कंटेस्ट हो रहे हैं वहां पे किस तरह से मतदान हुआ है। सो ये कोई जनरलाइज करना काफी मुश्किल है कि कम मतदान से क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो नहीं है कि ज्यादा मतदान हो तो रूलिंग पार्टी को फेवर हो या कम मतदान हो को ऑपोजिशन को फेवर हो, ऐसा कोई ट्रेंड तो हम क्लियरली बता नहीं सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट एरियाज में इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा आप अगर कर्नाटका की बात करें जहां पे प्रमुख कैंडिडेट्स थे वहां पे थोड़ी मतदान फर्स्ट राउंड में हो सेकेंड राउंड में हो थोड़ी ज्यादा हुई है, जहां लगा था कि कैंडिडेट्स उतने प्रोमिनेंट नहीं हैं वहां पे थोड़ा कम मतदान हुआ है। सो इस फैक्टर को आप कर्नाटका में क्लियरली देख सकते हैं, द नेचर ऑफ कॉन्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे हुआ उसका इम्पैक्ट आप वोटर टर्नआउट में भी देख सकते हैं।
जी जी, और आखिरी बड़ा सवाल यही कि ये जो तीन चरण के चुनाव हुए हैं अभी, उनको देखकर क्या समझ में आ रहा है अभी तक? अगर संजय जी एक ओवरऑल अभी तो कई फेजेस बाकी हैं, लेकिन अभी जो हुआ है एक बड़ा ट्रेंड, इसमें से कुछ या कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्या समझ में आई हैं अब तक?
मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चुनाव जितना नेशनल 2019 के चुनाव थे या 2014 के चुनाव में जितना एक नेशनल बड़े मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा था, बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार का चुनाव भी एक नेशनल मुद्दे पर लड़ा जाएगा, कम से कम राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन चुनाव उस ओर जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तीन चरणों के चुनाव में यही दिखता है कि चुनाव नेशनल न होकर काफी लोकलाइज्ड हो गया है। और आप देखें किस तरह से, और थोड़ा सा आप देखें कैसे बीजेपी कांग्रेस के पिच पर एक तरह से खेलने लगी है, कहने का मतलब है नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है। अगर आप रिजर्वेशन के मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी ओबीसी सेंसस होना चाहिए और सोशल जस्टिस के मुद्दे को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था, और आज आप देखें तमाम बीजेपी के नेताओं के भाषण में उसको रेस्पॉन्ड किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, लेकिन चुनाव इस तरह से मुझे बदलता हुआ दिखाई पड़ा है।
संदीप जी, आपको भी लगा कि कुछ इस तरह से बदला है, या आप अग्री करते हैं इस बात से कि अब ये लग रहा है कि कोई एक बड़ा इमोटिव नेशनल इशू यहां पर नहीं मिला और कांग्रेस इस वक्त एक नैरेटिव सेट कर रही है, बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही है, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, और जैसे राम मंदिर से उम्मीद थी कि एक ऐसा मुद्दा होगा जो पैन इंडिया जिसकी अपील होगी, ये ऐसा मुद्दा बनकर उभरा नहीं?
मैं संजय जी की बात को मानूंगा पर उस पर एक एडिशन करूंगा कि जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है राज्य में, वहां पे देखिए ये नेशनल नैरेटिव जो बीजेपी बिल्डअप कर रही थी प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर, और दूसरी तरफ जहां कांग्रेस उनकी सरकार राज्य में थी उन्होंने लोकल इश्यूज वहां पे उठाया, तो इन राज्यों में नैरेटिव एक नेशनल वर्सेस लोकल हो गया है। और जहां पे रीजनल पार्टीज का भी सरकार है उन राज्यों में भी जहां बीजेपी के साथ इन रीजनल पार्टीज का मुकाबला है, उन्होंने वहां पे भी उसको रीजनल वर्सेस नेशनल एक कंपटीशन बना दिया है। ये आप पहले तीन चरण में देख रहे हैं। अब आगे के चरणों में क्या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, अपना रणनीति बदलेंगे ताकि जो विषय वो उठाना चाहते हैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिले, ये देखना पड़ेगा। पर फर्स्ट थ्री राउंड्स में जैसे संजय जी ने कहा क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, स्पेशली उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार हो या रीजनल पार्टीज की सरकार।
नीरजा जी, आपको लग रहा आने वाले दिनों में कुछ बदलेंगे मुद्दे?
देखिए, दो चीजें मुझे लगती हैं। एक तो कि ऑपोजिशन लड़ रही है, जब चुनाव शुरू हुआ ऐसा लगता था कि ऑपोजिशन ने हथियार डाल दिए हैं और ये वन साइडेड होगा, लोगों ने मतलब बोर हो गए थे लोग, कहानी खत्म है, हमको पता क्या होने वाला है। लेकिन ऑपोजिशन टक्कर दे रही है कई जगह पे और लोगों का असंतोष भी लोग बता रहे हैं। अब टक्कर का मतलब जरूरी नहीं कि विक्ट्री उनके फेवर में, बट कई स्टेट्स में, नॉर्थ इंडियन
मतलब रेस में है वो, ऐसा लग रहा है।
हाँ, रेस में कई जगह है, तो महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन स्टेट्स में जहां अनएक्सपेक्टेड था, कर्नाटक तो है ही। तो दूसरी चीज है जैसे संजय जी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे जा रहा है नैरेटिव भी बदल रहा है। नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द, जो कि कांग्रेस ने अपना मुद्दा बनाया है, और दलित टोलों तक ये बात चली गई है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाएगा, 400 सीटों का मतलब क्या है, हमारा आरक्षण तो नहीं खत्म हो जाएगा, ये बात चली गई है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री और भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन मुस्लिम्स को देना चाह रही है, पर संविधान सेंट्रल हो गया उस नैरेटिव का।
तो नैरेटिव भी बदलने की उम्मीद है और लग रहा है कि नैरेटिव कुछ बदला भी है, जैसा कि संजय जी ने भी कहा, नीरजा जी ने भी कहा कि नैरेटिव कांग्रेस भी सेट कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द ये बात अब आके रह गई है। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और, लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का मतदान देश भर में चल रहा था, उधर हरियाणा की बीजेपी सरकार संकट में आ गई है। हरियाणा में बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार को समर्थन दे रहे तीन निर्दलीय विधायकों ने अपना हाथ खींच लिया और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने बीजेपी सरकार को अपना समर्थन जो दिया था वो वापस लेने का ऐलान किया और कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। इन तीनों विधायकों का कहना है कि वो बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है, इसलिए समर्थन वापस ले रहे हैं। इसके साथ ही 90 सदस्यों की हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 43 विधायक ही रह गए हैं। हरियाणा में जेजेपी के बीजेपी से समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी के पास 48 विधायकों का समर्थन था, इनमें से बीजेपी की 2 सीटें खाली हो गईं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर और विधायक रणजीत चौटाला के लोकसभा चुनाव लड़ने से ये 2 सीटें खाली हुई हैं, बाकी बची 46 सीटों में से 3 निर्दलियों ने समर्थन वापस ले लिया है। बीजेपी के पास अब बहुमत से 2 कम यानी सिर्फ 43 सदस्य रह गए हैं, तो सरकार अल्पमत में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संकट पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं।
विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी।
तो अभी हंस रहे हैं लेकिन इस समय समस्या ये है कि सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। तो इस वक्त खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।